कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान सेकेंड पेपर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के उदय के कारण विकास तथा उसके कार्यक्रमों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 भारतीय राष्ट्रवाद में एक युगांतकारी घटना थी। इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा तथा सत्याग्रह के सिद्धांतों ने भारतीय राजनीति में एक नया जीवन फूका तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए भारतीयों को एक नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति के कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियों में ही मौजूद थी। इस आंदोलन की उत्पत्ति के प्रमुख कारण का आधार निम्न घटनाएं थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध की संज्ञा दी तथा भारतीय सरकार ने भी इस युद्ध में भाग लिया। युद्ध के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि युद्ध के पश्चात वे स्वशासन की दिशा में कदम उठाएंगे। युद्ध में भाग लेने के लिए साम्राज्यवादी सरकार ने जबरन सेना में भर्ती की जबरन चंदा उगाही का अभियान चलाया, जिससे जनता पहले से परम प्रया संतोष और भयंकर हो उठा। दूसरी तरफ विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को सुधार के स्थान पर दमनात्मक कानून मिले। सुभाष चंद्र बोस का मानना है, भारतीय संघर्ष में जागृति से संसार में होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है। भारतीय जनमानस ने महसूस किया कि यदि रूस में जारशाही के खिलाफ सफल क्रांति हो सकती है, आयरलैंड, पोलैंड, तुर्की आदि जब आंदोलन कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। अतः समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरणा लेकर आंदोलन का ताना बाना बोरा गया। दूसरा कारण, रॉल अटैक दूसरा मुख्य कारण था जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन से बचने के लिए भारत रक्षा अधिनियम पारित किया, जो युद्ध खत्म होते ही समाप्त कर देना था। परंतु साम्राज्यवादी शासकों ने न्यायमूर्ति रॉलट की अध्यक्षता में एक कमेटी 10 दिसंबर 1917 को गठित कर दी, जिसने सरकार को क्रांतिकारी आंदोलन से बचने वाले कानून को सुझाया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1918 में दी, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, संदिग्ध व्यक्तियों से जमानत मांगा जा सकता और किसी भी भवन की तलाशी बिना वारंट ली जा सकती है, तथा दूसरा पहलू क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के मुकदमे विशेष कोर्ट में चलाए जाने थे, जिसकी कार्रवाइयों को गुप्त रखा जाता था। साधारण भाषा में बंगाली लोग इस बारे में कहते थे, रॉलट एक्ट का अर्थ है कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। विधान परिषद के सारे भारतीय सदस्यों ने विरोध के बावजूद यह कानून पारित कर दिया, जिससे मानव के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्राकृतिक आधार को समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में विधान परिषद के अधिकांश भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले 30 मार्च 1918 के दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया। दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल तथा 6 अप्रैल के देशव्यापी हड़ताल की सफलता अभूतपूर्व थी। श्रीनिवास शास्त्री ने इस कानून के बारे में कहा था, यदि यह कानून पारित हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यहां बैठा कोई भी भारतीय या आंदोलन में शामिल होना अपना धर्म नहीं धर्म समझेगा। हड़तालियों तथा सत्याग्रहियों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई चलती रही तथा गांधी जी ने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य शैतानियत का प्रतीक है। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का ही परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अलोकप्रिय गवर्नर माइकल ओ डायर ने नीतियों तथा आर्थिक कारणों से पंजाब के जनता में भयंकर जनाक्रोश विद्यमान था। 6 अप्रैल 1918 की हड़ताल सफलता ने राष्ट्रवादियों की ताकत को और बढ़ा दिया। पंजाब सरकार आंदोलन को दबाने के उद्देश्य 10 अप्रैल को अमृतसर के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को जिला बदर कर दिया। इसके विरोध में जुलूस निकाले गए, हिंसात्मक घटनाक्रम हुई, यूरोपीय लोगों को क्षति पहुंची तथा मिस शेरवुड को पीटा गया। जुलूस पर अकारण गोली चलाकर अनेक लोगों की हत्या कर दी गई था, बहुत से गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल को पंजाब में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया तथा किसी तरह का जुलूस सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। सत्याग्रहियों ने 13 अप्रैल को अमृतसर शहर के बीच स्थित जलियांवाला के मैदान में हजारों की संख्या में जुटकर शांति सभा कर रहे थे। इतने में जनरल डायर 100 भारतीय तथा 50 यूरोपियन सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आया और बिना चेतावनी दिए बाघ के एकमात्र सक्रिय रास्ते पर मशीन गन लगाकर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चली, करीब 100-150 गोलियां चली, जिसमें 1000 लोग मारे गए तथा 1200 से ऊपर घायल हुए। मृतक घायल आदमियों में स्त्री बच्चे वृद्ध सभी शामिल थे। दमन की प्रक्रियाएं और तेज हो गई। समूचे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जिस गली में मिस शेरवुड को पीटा गया था, उस गली से गुजरने वाले हर भारतीय को रेंगना पड़ता था तथा कोड़े लगाए जाते थे। सरकार के इन अमानवीय कारतूतों ने भारतीय जनता को एक संगठित आंदोलन चलाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना की जांच के लिए 2 समितियां नियुक्त की गई। एक राजकीय समिति, जिसे हंटर समिति कहते हैं, ने अपनी रिपोर्ट 24 मई 1920 को दी, जिसने अमृतसर के मृतकों की संख्या 349 बताई तथा पंजाब के गवर्नर को निर्दोष बताया और जनरल डायर के कार्रवाई को एक फूल की संज्ञा दी। दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस की समिति ने 20 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कांग्रेसियों ने इसे एक अमानवीय करतूत बताया था। गवर्नर जनरल पंजाब के गवर्नर को बर्खास्त करना था। जनरल डायल को मामला चलाने की मांग की, परंतु साम्राज्यवादी शासक ने गवर्नर जनरल था और उपराज्यपाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की तथा जनरल डायर को भारत में सेवा न करने के योग्य ठहराया। परंतु इंग्लैंड में जगह जगह जनरल डायर के सम्मान में सभा का आयोजन हुआ तथा उनकी सहायता के लिए चंदे एकत्रित किए गए। सरकार के इस अन्यायपूर्ण कार्यों से वही लोग भी सरकार के मुखर आलोचक बन गए जो पहले उनके साथ थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत सचिव द्वारा बनाया गया सहयोग का जलपोत जलियांवाला बाग की चट्टानों पर टूटकर समाप्त हो गया, और श्री मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनाया गया सहानुभूतिपूर्ण रुख इस विशालकाय षड्यंत्र में समाप्त हो गए। चौथा, आर्थिक कारण। और असहयोग आंदोलन के आर्थिक कारण भी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात आए आर्थिक मंदी के प्रभाव से व्यापार तथा उद्योग में अत्यधिक अव्यवस्था आ गई थी। सामानों की कीमत बढ़ गई, जिससे श्रमिक किसान वर्गों को अत्यधिक कठिनाई हुई। ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने पाउंड तथा रुपयों का विनियोजन अपने हित में करने से भारतीय जनमानस अत्यंत उग्र हो गई। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में पहली बार असहयोग को निम्न भारतीय वर्गों का जो सहयोग मिला वह अप्रतिम था। पांचवा, खिलाफत का प्रश्न। खिलाफत का मामला तुर्की के खलीफा से जुड़ा हुआ है। तुर्की का खलीफा संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया तथा युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को अपमानजनक संधि करने पर बाध्य किया। उसके साम्राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्र उसे छीन लिए गए। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों में हुई तथा सितंबर 1919 में उन्होंने खिलाफत पार्टी का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन मजरूल हक की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। इसकी मांग थी कि तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित किया जाए। इसी समय महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदू मुस्लिम दोनों साम्राज्यवादी सरकार का तीव्र विरोध कर रहे थे। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर इसे मानकर खिलाफत का समर्थन किया, साथ ही मुसलमानों को भी असहयोग के समर्थन करने का वचन लिया। अगले दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की तथा कहा कि ब्रिटिश अन्याय का उत्तर असहयोग आंदोलन में दिया जाएगा। अतः इन सभी कारणों ने 1920 में असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही महात्मा गांधी के एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्रीय क्षितिज पर आकर एक ऐसा नेता दिया जो सत्य और अहिंसा के साथ इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल लिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम निम्न थे। 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि जब तक खिलाफत तथा जलियांवाला बाग कांड में न्याय नहीं मिल जाता, शांति स्थापित नहीं होगी तथा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के लिए भी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से सत्य अहिंसा तथा सत्याग्रह की राह पर चलते हुए निम्न कार्यक्रम अपनाए जाएंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला बहिष्कार और दूसरा रचनात्मक कार्य। बहिष्कार के अंतर्गत कांग्रेस ने भारतीयों को निम्न कदम उठाने का परामर्श दिया। पहला, सभी उपाधियों अवैतनिक पद तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत सदस्य त्याग पत्र देंगे। दूसरा, राजकीय उपाधि ग्रहण दरबार तथा पदाधिकारियों के लिए किए गए समारोह में ना जाएं। तीसरा, भारतीय संतानों को अपने संतानों को सनेह उन स्कूल कॉलेज से हटा ले जो सरकार के अनुदान से चलते हैं या नियंत्रित होते हैं, और उनके स्थान पर भिन्न भिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज स्थापित करने में यथासंभव सहयोग करें। चौथा, वकील तथा वादियों को अंग्रेजी न्यायालय का धीरे धीरे बहिष्कार करना चाहिए तथा दीवानी मुकदमों का पंच द्वारा निर्णय कराएं। पांचवा, सेना लिपिकों तथा श्रमिकों को विदेशों में सेवा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छठा, विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करें तथा सातवां, विदेशी माल कपड़े आदि का बहिष्कार करें। रचनात्मक कार्यक्रम। असहयोग के रचनात्मक पक्ष में यह था कि भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। ए, भारत के कटे बुने कपड़ों तथा अन्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। बी, अस्पृश्यता की भावना को समाप्त किया जाए। सी, मादक वस्तुओं का प्रयोग बंद करके नैतिकता का स्तर उठाया जाए। डी, भारतीय मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए तथा ई, स्वराज निधि के रूप में तिलक स्मारक निधि में 1 करोड़ रुपया एकत्रित किया जाए। असहयोग आंदोलन का विकास। 1921 में इस आंदोलन में तूफानी लहराया। बहिष्कार का कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा अनेक भारतीयों ने अपनी उपाधि सरकार को लौटा दी। वकीलों ने अपनी हजारों रुपयों की आय वाली वकालत छोड़ दी। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। प्रांतीय तथा केंद्रीय परिषदों के चुनाव में कोई कांग्रेसी आगे नहीं आया था। कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों की कमी के कारण चुनाव नहीं हुए। चित्रनंदन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई तथा वल्लभ भाई पटेल, राजगोपाल आचार्य आदि ने अपने लाख टके की वकालत को लात मार दी। कांग्रेस के तत्वावधान में स्थापित पंच न्यायालयों ने बहुत कार्य किया तथा सरकार को न्यायालयों से कर की बहुत हानि हुई। राजकीय शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना से बंगाल राष्ट्रीय विद्यालय, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, दिल्ली का जामिया इस्लामिया, लाहौर का राष्ट्रीय कॉलेज, बनारस का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आदि अस्तित्व में आए। बड़े बड़े नगरों में विदेशी मालों की होली जलाई गई। रचनात्मक कार्यों में हाथ से सूत काटना एक जुनून बन गया तथा खादी पहनना फैशनेबल होने के साथ साथ राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। मादक वस्तुओं के नियंत्रण के कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। शराब के दुकान पर पिकेटिंग की गई, इससे सरकार का राजस्व कम हो गया। असम बंगाल में रेलवे हड़ताल, मिद्रापुर में कांग्रेसियों के कर देने से मना करना, पंजाब में सरकार के समर्थन वाली गुरुद्वारा के महंत के विरुद्ध अकाली आंदोलन आदि इस आंदोलन की सफलता की कहानी खुद बयां करता है। त्रावणकोर में मापला विद्रोह तथा राजकुमार वेल्स की 1921 की यात्रा का विरोध करने का कांग्रेस का अपील सफल रहा। प्रिंस जहां जहां भी गए हड़तालों तथा सत्याग्रह से उनका स्वागत किया गया। कलकत्ता में राजकुमार के विरुद्ध प्रदर्शन सर्वाधिक सफल रहा। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सत्य तथा अहिंसा का मूल मंत्र दिया था। उनका कहना था कि सरकार कितनी भी यातना दे, अत्याचार करे, उसके दमनात्मक कार्यवाही का विरोध हम अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। उन्होंने सत्याग्रहियों को आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। कांग्रेस का जेल भरो अभियान भी सफल रहा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय तथा अनेक सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी गांधी जी को छोड़कर जेल में डाल दिए गए। जेल जाने के समय गांधी जी ने कहा था, जेल के दरवाजे चौड़े कर दो तथा हमें जेल उसी प्रकार जाना चाहिए जैसा दूल्हा दुल्हन के कक्ष में जाता है। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसे आमजन का अभूतपूर्व समर्थन मिल गया था। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 7 दिन के अंदर अपना हृदय परिवर्तन न किया तो वे कर न देने का अभियान चलाएंगे। परंतु उत्तर देश में चौरी चौरा के स्थान पर सत्याग्रह हिंसा पर उतारू होकर थाने में आग लगा दी, जिससे 21 पुलिसकर्मी मारे गए। इस कार्य से गांधी जी को असीम मानसिक वेदना हुई था। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तथा इसे एक महान भूल बताया। अतः 1920 में रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन ने अपनी चरम स्थिति पर समाप्त हो गया, जिससे जनता था कांग्रेस में निराशा हुई तथा विरोधियों ने इसे गांधी जी की तानाशाही बताया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण का वर्णन करते हुए इसका मूल्यांकन करें। सन फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि जनता में अभी जनसामान्य में हिंसा सहने की क्षमता नहीं आई है तथा वे हिंसात्मक हो उठे हैं, परंतु अहिंसक आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। परंतु आमजन तथा कांग्रेस इससे बहुत निराश हुए तथा अनेक व्यक्तियों ने इसे वापस लेने के अनेक कारण बताए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे महात्मा गांधी की तानाशाही बताया तथा उन्होंने कहा था, जब जनता का जोश चरम सीमा पर पहुंचने वाला ही था, उसी समय लौट जाने की आज्ञा देना एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। उन्होंने गांधी जी पर आंदोलन का गला घोट देने का आरोप लगाया। मौलाना कलाम आजाद ने आंदोलन को वापस लेने को एक महान भूल की संज्ञा दी, जिससे सारा जोश तथा मनोबल ठंडा पड़ गया। चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू आदि भी महात्मा गांधी के इस कदम से अप्रसन्न थे। रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक में इंडिया टुडे में उल्लेखित किया है कि महात्मा गांधी ने बरदौली के किसान से सरकार को कर न देने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने जमींदारों को कर न रोकने का परामर्श दिया। आगे दत्त लिखती है कि गांधी जी को सभी कांग्रेसी साथी ने आंदोलन इसलिए वापस ले लिया कि उन्हें यह भय था कि उसी आंदोलन की बागडोर जनता के हाथ में चली जाएगी, जिससे वे डरते थे, क्योंकि इसे संपत्ति वाले वर्ग के हितों को भय था और स्वयं कांग्रेस इस संपत्ति वाले वर्ग के साथ था। राजकीय लोग इस बात का विश्लेषण इस बात से करते हैं कि सरकार ने कर की अगली किस्त पहले ही ले रखी थी। ये बात ही गांधी जी को मालूम नहीं थी, परंतु जब गांधी जी को यह बात मालूम पड़ी तो अपनी निराशापूर्ण स्थिति से बचने के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि गांधी जी को सरकार के क्रूर दमन चक्र अपनाने का निश्चय कर लिया था। कांग्रेस को उस दमन चक्र से निवटना भारी गुजरता। अतः गांधी जी को यह भी भय था कि संभवतः सरकार उस आंदोलन को सांप्रदायिक स्वरूप दे सकती है, जैसा कि बाद में त्रावणकोर के मोपला विद्रोह में देखने को मिला, जिसमें मुस्लिम काश्तकारों ने अपने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध बगावत कर दी तथा भयंकर मारकाट मचा दी। अतः गांधी जी समय से पूर्व जागृत होकर जागरूकता का परिचय देते हुए चौरा चौरी कांड का बहाना बनाकर आंदोलन को बंद कर दिया। जुडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी जी राइज टू पावर में यह तर्क दिया है कि असहयोग बहुत सफल नहीं सिद्ध हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेकर वास्तविकता का ही परिचय दिया। डीओले ने अपनी पुस्तक कांग्रेस एंड द राज में यह कहा है कि जलियांवाला दमनात्मक कार्यवाही के पश्चात एक ठंडी तथा शांतिमय नीति अपनाई सरकार ने, जिसके अभिकर्ता विलियम विंसेंट थे। उनकी धारणा यह है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को खूब लंबी चलने दिए, जिससे आंदोलन खुद अपने आप में उलझ कर रह जाए। उनकी यह नीति सफल रही तथा असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। यदि घोषित लक्ष्यों के आधार पर असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो यह आंदोलन निष्फल रहा। इस आंदोलन ने न तो खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान कराने में सफलता प्राप्त की और न ही इस आंदोलन से पंजाब के अन्याय का प्रतिकार हुआ और न ही स्वराज की प्राप्ति हुई। जहां महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात कही थी, इस आंदोलन का बहिष्कार ही मात्र आंशिक सफलता प्राप्त कर सका। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद असहयोग आंदोलन भारत के मुक्ति संग्राम में एक विशिष्ट स्थान पाने का अधिकारी है। आंदोलन ने देशवासियों के अंदर निडरता, आत्मविश्वास व देशभक्ति की भावना तथा जज्बा पैदा करने में सफलता प्राप्त की। विश्व इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि नैतिक आदर्शों तथा अहिंसात्मक तरीकों को अपनाकर एक राष्ट्र ने अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ी। यह पहला संघर्ष था जिसने भारतीय संघर्ष के चरित्र में बहुआयामी परिवर्तन और बुनियादी परिवर्तन ला दिया। अभी तक के संघर्ष भारतीय जनता के लिए थे, परंतु असहयोग आंदोलन तो भारतीय जनता का ही संघर्ष था। असहयोग आंदोलन का महत्व उस अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी है जो 1857 के बाद पहली बार इस संघर्ष में देखने को मिली, जिसे इसके बाद के इतिहास में भी अभाव है। कांग्रेस जो पहले एक विचार विमर्श करने वाली थी तो अपने सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करती रही, परंतु असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस को अब तक एक क्रांतिकारी संस्था व लड़ाकू संस्था बन गई थी जिसका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि असहयोग आंदोलन ने जनता में नया आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया। अब शक्तिशाली ब्रिटिश शासन का भय नहीं रह गया था। लोगों ने घर घर से स्वराज का नारा लगाया। जेल अब भयानक स्थान न रहकर व्यक्ति की आंदोलनकारियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया था। यह रिकॉर्डिंग पंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय पेपर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास के लिए यशपाल एवं ग्रोवर की पुस्तक के द्वारा सुजीत कुमार के लिए 26 दिसंबर 2007 को की गई है।